哦，上帝 ，Debes no tratarki afecta patataki afecta morli。विश्व की आत्माओं को लाइट व माइट देने वाला ही विश्व अधिकारी नवा विश्व निर्माता त्रिकालदर्शी बनाने वाले हर परिस्थिति और हर समस्या का सामना करने की शक्ति देने वाले और दिव्य दृष्टि विधाता शिव बाबा बोले, क्या आप अपने ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंची स्थिति पर सदा स्थित रहने वाली स्वयं को श्रेष्ठ आत्माएं समझकर हर कर्म करते रहते हो? जैसे बाप के बारे में कायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। इसी के अनुसार क्या आप अपने को भी बाप समान ऊंचे नाम और ऊंचे काम करने वाली विशेष आत्मा समझते हो? यह ध्यान रखते हो कि एक भी व्यर्थ अथवा साधारण संकल्प उत्पन्न न हो। इसको कहा जाता है ऊंची स्थिति। क्या आप अपने को ऐसी ऊंची स्थिति वाला अनुभव करते हो? जब तक व्यर्थ संकल्प बोल या कर्म है, तब तक श्रेष्ठ नहीं बन सकते। या तो बेस्ट है या फिर वेस्ट है। जैसे दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं, वैसे ही जहां वेस्ट होता है वहां बेस्ट नहीं बन सकते। तो बेस्ट बनने के लिए वेस्ट को खत्म करना पड़ेगा। जब वेस्ट खत्म हो जाएगा तब अनुभव करोगे कि आत्मा कैसा भी कार्य करती हुई, कैसे भी वातावरण अथवा परिस्थिति में रहती हुई और हंगामे होते हुए भी वो रेस्ट में है। जैसे आजकल साइंस वाले अपनी साइंस की नॉलेज के आधार पर कैसे भी दुख के समय एक इंजेक्शन द्वारा अल्पकाल के रेस्ट का अनुभव कराते हैं ना? वैसे ही कितनी भी आवाज और कितना भी तमोगुणी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से वेस्ट समाप्त होने के कारण बेस्ट स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट अनुभव करोगे, अर्थात सदा अपने को सुख और शांति की शैया पर आराम करता हुआ अनुभव करोगे। जैसे यादगार का चित्र भी है, सागर में जहां लहरों की हलचल होती है तो सागर में होते हुए सांपों की शैया होते हुए भी, अर्थात वातावरण व परिस्थिति दुख में होते हुए भी आराम का अनुभव करोगे। सांप तो दुखदाई अर्थात काटने वाला होता है ना? तो इसका भाव यह है कि ऐसी परिस्थितियां, ऐसा वातावरण जो काटने वाला हो, हिलाने वाला हो और अपने विष द्वारा मूर्छित करने वाला हो, लेकिन ऐसे वातावरण को भी सुख शांति की शैया बना दे, अर्थात आराम का स्थान बना दे, अर्थात आत्मा सदा अपने रेस्ट में रहे, तो जैसा यादगार चित्र है क्या वैसे ही प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करते हो? शीतलता में शीतल रहना कोई बड़ी बात नहीं है। आराम के साधनों में आराम से रहना यह भी साधारण बात है, लेकिन बेआरामी में आराम से रहना, इसको कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली। तो ऐसे विषय सागर के बीच रहते हुए पांच विकारों को अपने आराम व सुख और शांति की शैया बनाना है, अर्थात क्या अभी से विकारों के ऊपर सदा विजयी बन, सदा ज्ञान के मनन और बाप के मिलन में मगन रहते हो? जो ऐसी स्थिति में स्थित है, अर्थात सदा मगन है, वह ही सदा निर्विघ्न है। मगन नहीं तो जरूर कोई विघ्न है। अब विघ्न आपके ऊपर वार करने से हार गए हैं, या आप भी विघ्नों से हार खा जाते हो? जब तक भी हार खाते रहना, क्या यह हो सकता है? यह तो असंभव है ना? अभी हार खिलाने वाले हो या कि हार खाने वाले हो? अगर स्वयं निर्विघ्न बने हो तो बनने वालों का कर्तव्य क्या है? कोई तो अब बन रहे हैं, कोई बन गए हैं। जो बनने वाले हैं वह अपने में ही बिजी, क्योंकि जब तक स्वयं न बने तब तक औरों को बनाने में यथा शक्ति ही कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो बन गए हैं उनका क्या कर्तव्य है? उनका कर्तव्य है दूसरों को बनाना, तो बना रहे हो ना? तो क्या पहले चैरिटी बिगिंस एट होम है? अर्थात अपने साथियों को। वे साथी कौन से हैं? आपके जो ब्राह्मण परिवार के साथी हैं, तो उन अपने साथियों को आप समान बनाने के बाद फिर बाप समान बनाना है। लेकिन पहली स्टेज में यदि उन्हें आप समान बनाओ तो भी बहुत है। तो जो बने हैं उनका कर्तव्य क्या है? उनका स्वरूप अभी कौन सा होना चाहिए? किसी ने उत्तर दिया विघ्न विनाशक। अच्छा, विघ्न विनाशक कैसे बनेंगे? तो किस रूप से सहार करेंगे कि जिससे सहज ही विश्व की सेवा कर सको? वह रूप कौन सा है? वो है डबल लाइट और माइट हाउस का। डबल क्यों कहा? क्योंकि आपको दो कार्य करने हैं। किसी को मुक्ति का रास्ता बताना है और किसी को जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। एक ही रास्ता नहीं बल्कि दो रास्ते दिखाने हैं। और हर एक आत्मा को अपने अपने ठिकाने लगाना है। तो जो बने हैं उनका स्वरूप अब डबल लाइट और माइट होना चाहिए, ताकि एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर अपने लाइट और माइट के आधार से भटकी हुई आत्माओं को ठिकाना दे देवे। तो क्या इस कार्य में बिजी हो? अब लाइट और माइट दोनों का बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ लाइट से भी काम न होगा और सिर्फ माइट से भी काम नहीं होगा। दोनों का बैलेंस जब ठीक होगा तब सब अंधों की औलाद अंधों को। शास्त्र में भी कौरव संप्रदाय के लिए गाया हुआ है कि अंधों की औलाद अंधे है। अपने लाइट और माइट के द्वारा कौन सा वरदान देंगे और वे वरदान में क्या प्राप्त करेंगे? डिवाइन इनसाइट अर्थात उन्हें तीसरे नेत्र का वरदान दो। वैसे भी नेत्र दान सबसे श्रेष्ठ दान कहा जाता है। नेत्र नहीं तो जहान नहीं, सबसे बड़े से बड़ा जीवदान कहो या वरदान कहो या महादान कहो, वास्तव में वह यही है। तो अंध को डिवाइन इनसाइट या तीसरे नेत्र का दान दो, जिससे कि वह मुक्ति और जीवन मुक्ति के ठिकाने को देख भी सके। अगर वे देखेंगे नहीं तो फिर पहुंचेंगे कैसे? इसलिए डबल लाइट और माइट हाउस बंद दोनों का बैलेंस ठीक रख हर आत्मा को तीसरे नेत्र का वरदान दो। यह है श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य। सिर्फ अपने प्रति ही लाइट और माइट रखा तो लाइट हाउस नहीं कहलाएंगे। अगर अपने में लाइट और माइट है तो अपने साथियों को और विश्व की सर्व आत्माओं को महादान दो और वरदान दो। अगर कोई बल्ब चारों ओर रोशनी न फैलाए, सिर्फ जहां जग रहा है उस थोड़े स्थान पर ही लाइट दे, तो कहेंगे ना कि यह तो काम का ही नहीं है। तो अपने को देखो कि क्या मैं स्वयं तक लाइट व माइट देने वाला बना हूं या विश्व तक लाइट और माइट देने वाला बना हूं? जितने तक लाइट देने वाले अब बनेंगे उतने ही छोटे या बड़े राज्य के अधिकारी भविष्य में बनेंगे। अगर सिर्फ थोड़ी सी आत्माओं के प्रति लाइट और माइट देने के निमित्त बनते हैं तो वहां भी थोड़ी सी आत्माओं के ऊपर ही राज्य करने के अधिकारी बनेंगे। यहाँ विश्व के सेवाधारी तो वहां भी विश्व के राज्य अधिकारी होंगे। एक होते हैं राज्य अधिकारी बनाने वाले जिनको टीचर कहते हैं, वह राज्य कारोबार सिखलाने वाले बनेंगे लेकिन राज्य करने वाले नहीं। अब आप सिखलाने वाले बनेंगे या करने वाले बनेंगे। वहां सत्युग में भी निमित्त मात्र पढ़ाते तो होंगे ना। राज्य कारोबार सिखलाने वाले शिक्षक जो होते हैं उसको राज्यधारी कहते हैं, परंतु राज्य अधिकारी नहीं। या तो राज्यधारी बनेंगे या फिर राज्य अधिकारी। लेकिन अधिकारी वह बनेंगे जो अभी से अपने स्वभाव, संस्कार और संकल्प के अधीन नहीं बनेंगे, जो अभी भी अपने संकल्प के अधीन होता है तो क्या वह अधिकारी हुआ? वह संकल्पों के भी अधीन हुआ ना? तो इसलिए अब संकल्पों के भी अधीन नहीं, स्वभाव और संस्कार के भी अधीन नहीं होना है, जो अब से इन सब के अधिकारी बनेंगे वह ही वहां राज्य अधिकारी बनेंगे। अब हिसाब निकालो कि कितना अधीन रहते हैं और कितना अधिकारी रहते हैं, फिर उसके रिजल्ट से स्वयं भी अपने भविष्य का साक्षात्कार कर सकते हो, अर्थात अपने आप को परखने के आईने में अपने वर्तमान और भविष्य 21 जन्मों के लिए हमारे फ्यूचर के फीचर्स क्या होंगे वह भी देख सकते हो। आप अपने 21 जन्मों के फीचर्स भी देख सकते हो अगर आपका अपने आप को परखने की शक्ति का आईना इतना पावरफुल हुआ तो। उस आईने में तो सिर्फ वर्तमान देख सकते हैं, भले कितने भी पावरफुल शीशे हो जिस द्वारा बहुत दूर की चीज को भी देख सकते हैं, लेकिन वह भी है तो इस दुनिया का ही ना। उससे भविष्य को तो नहीं देख पाते, लेकिन आप लोगों को परखने की शक्ति का आईना इतना पावरफुल मिला है जिनसे न सिर्फ भविष्य 1 जन्म को अपितु 21 जन्मों को देख सकते हो, और फिर 21 जन्मों के आधार पर भविष्य पद के आधार पर अपने पुजारीपन के पाठ को भी देख सकते हो। तो ऐसा पावरफुल आईना जो बाप दादा द्वारा प्राप्त हुआ है, क्या उनमें देखते रहते हो? अपने को क्लियर देख सकते हो कि देखने के लिए किसी और की जरूरत है? त्रिकालदर्शी को और कोई की आवश्यकता होती है क्या? त्रिकालदर्शी तो दूसरों के भविष्य को भी जान सकते हैं। तो क्या आप अपने भविष्य को नहीं जान सकते? त्रिकालदर्शी बने हो कि एकदर्शी बने हो? एकदर्शी अर्थात सिर्फ वर्तमान के दर्शी। अब तो त्रिकालदर्शी बन सबको संदेश दो। जब एकदर्शी बन संदेश देते हो तो 1% ही रिजल्ट निकलती है। त्रिकालदर्शी बन संदेश दो तो तीन हिस्सा रिजल्ट तो निकल ही जाएगी, अर्थात 70% पाए रिजल्ट होगी। अब है 25% रिजल्ट, तो अब क्या करेंगे? अभी पांडव सेना की विजय का झंडा लहराएंगे, फिर क्या करेंगे? दोनों ही लहराएंगे ना, यह झंडा लहराना तो सहज है, चाहे एक के बजाय 100 लहरा दो, हर एक अपने एरिया में जितने चाहे लहरा दे, लेकिन इस झंडे के लहराने का अर्थ क्या है? विजय का झंडा लहराना, जो अब मिलकर तन मन और धन सब लगा रहे हो, वह किस लक्ष्य से? क्या सिर्फ शिव के चित्र के झंडे लहराने के लक्ष्य से? अब लक्ष्य यह रखो कि सब मिलकर अपनी राजधानी पर विजय का झंडा लहराएंगे और सब पर विजय पाएंगे। अगर बच भी जाए तो वह भी दबे हुए हो, बोलने से चुप तो हो ही सकते हैं ना, अब तो चुप भी नहीं है, अब तो बोलने में भी होशियार है। देखो विश्व का मुख कौन सा है? अखबार, पर्चे और मैगजीन। अब विश्व के मुख द्वारा बोलते तो रहते हैं ना, लेकिन चुप हो जाए, मार न सको तो कम से कम मूर्छित तो करो। मूर्छित वाले भी बोलेगा तो नहीं ना। अब यह रिजल्ट आउट होनी है। राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं, और कोटों में से लाखों में से एक कौन निकलते हैं, वह भी देखेंगे। लेकिन यह होगा कैसे? इसके लिए दो बातें छोड़नी है और एक बात धारण करनी है। दो बात कौन सी छोड़नी है? दो मत को छोड़कर एक मत धारण करनी है। लेकिन दो मत होती क्यों है? एक मत से दो मत में आने का कारण क्या है? दो बातें छोड़नी क्या है और एक बात धारण क्या करनी है? छोड़नी है एक तो स्तुति और दूसरी परिस्थिति, क्योंकि एक तो कोई परिस्थिति के कारण डगमग होते हैं और दूसरे स्तुति में आने से स्थिति नहीं बनती है। तो इसलिए स्वस्थिति को धारण करना है, और स्तुति और परिस्थिति इन दोनों बातों को छोड़ना है, संकल्प से भी छोड़ना है। परिस्थिति के कारण स्वस्थिति नहीं होती है और स्तुति के कारण स्थिति नहीं होती, तो इसलिए स्तुति में कभी नहीं आना। अगर यहाँ अपनी स्तुति का संकल्प भी रखा तो आधा कल्प से जो स्तुति होनी है उसमें 100 गुना कट हो जाता है, क्योंकि आपकी अल्पकाल की स्तुति सदाकाल की स्थिति को कट कर देती है। इसलिए अब परिस्थिति शब्द भी नहीं कहना और स्तुति का संकल्प भी नहीं करना। जितना निर्माण रहेंगे उतना निर्माण का कार्य सफल होगा। अगर निर्माणता नहीं तो निर्माण नहीं कर सकते। निर्माण करने के लिए पहले निर्माण बनना पड़ेगा। इसलिए एक स्लोगन सदा याद रखना, कोई भी कार्य हो, कोई भी सर्कमस्टेंसेस सामने हो, लेकिन सदैव जैसे अज्ञान काल में कहावत है कि पहले आप अर्थात दूसरों को आगे बढ़ाना स्वयं को आगे बढ़ाना है। स्वयं का झुकना ही विश्व को अपने आगे झुकाना है। इसलिए सदैव एक दो में यही वृत्ति दृष्टि और वाणी रहे कि पहले आप। यह स्लोगन कब भूलना नहीं। जैसे बाप दादा ने कभी भी संकल्प व बोल में व कर्म में यह नहीं दिखलाया कि पहले मैं। सदैव बच्चों को पहले लाए, इस दृष्टि व वृत्ति को आगे रखा। इस प्रकार फॉलो फादर करने वाली हर आत्मा इस बात में फॉलो फादर करेगी तो सफलता 100% गले की माला बनेगी। अगर पहले आपकी बजाय पहले मैं यह संकल्प भी किया, अगर एक आत्मा ने भी यह संकल्प किया व वाणी और कर्म में भी लाया, तो मानो सफलता की माला का एक मन का टूटा। माला से एक मन का भी यदि टूट जाता है तो सारी माला पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए स्वयं को तो इस बात में पक्का करना ही है, लेकिन स्वयं के साथ साथ संगठन को भी इस पाठ में व इस स्लोगन में सदा सफल बनाने के प्रयत्न में रहना है, जिससे विजय माला का एक मन का भी अलग न होने पाए। जब ऐसा पुरुषार्थ करेंगे व यह कार्य करेंगे, तब विजय का झंडा अपनी राजधानी के ऊपर खड़ा कर सकेंगे। पाठ बजाने के पहले रिहर्सल, समझा? ड्रेस और मेकअप आदि किया जाता है, तभी पाठ सक्सेसफुल होता है। तो यह धारण करना है, ऐसे सजे सजाए एवर रेडी बन जब स्टेज पर आएंगे तो सबके मुख से हियर हियर का आवाज, वंस मोर की आवाज निकलेगी। क्या तैयारी के साथ साथ यह भी तैयारी कर रहे हो? सिर्फ स्थूल तैयारियां करने में तो बिजी नहीं हो गए हो? पहले अपनी ड्रेस तैयार करो, फिर मेकअप का सामान तैयार करो। मेकअप करना अर्थात स्थिति में स्थित होना। क्या यह भी तैयारी कर रहे हो? क्या इनकी भी मीटिंग करते हो? ज्यादा मीटिंग में यह पॉइंट भूल न जाना। स्टॉल को सजाते सजाते समय हो जाए और स्वयं ऐसे ही खड़े हो जाओ। ऐसे होता है ना? कई सेंटर्स पर फंक्शन की तैयारी करते करते स्वयं ऐसे ही खड़े रह जाते हैं, स्वयं तैयार नहीं होते। तो यहां अब ऐसे नहीं करना। दान लेने वाले आ जावे और आप उस समय सोचो कि क्या ले आवे जो बातें। इसलिए स्टॉक पहले से ही इकट्ठा किया जाता है। उस समय इकट्ठा करने व कोशिश करेंगे तो कहीं वंचित रह जाएंगे। जैसे और चीजों का स्टॉक इकट्ठा करते हो, वैसे ही यह स्टॉक पहले इकट्ठा करना है। जिसको जो चाहिए, सुख शांति चाहिए या सिर्फ प्रजापद चाहिए या कोई को साहूकार पद चाहिए और कोई सिर्फ सलाम भरना चाहे। विश्व महाराजन को कई ऐसे भी चाहते हैं कि जो सदैव चरणों के दास रहे। तो ऐसे भक्त जो नमन करना चाहते हो, ऐसों का भी स्टॉक भर दो। जिसको जो चीज चाहिए और जिस चीज की इच्छा हो, उसकी इच्छा अविनाशी पूरी कर सको। इस मिट्टी की दुनिया की नहीं, सोने की दुनिया की। ऐसा स्टॉक जब इकट्ठा होगा, तब जल्दी अपने स्टॉक से उन आत्माओं को दे सकोगी। क्या यह भी तैयारी की है? यह पोता मेल निकाला है या सिर्फ यही निकाला है कि हर एक जोन कितना तन धन देंगे, कितने बैनर्स और चादरें आदि देंगे? क्या यह निकाल रहे हो? लेकिन अपने मस्तक पर भी बैनर्स लगाना पड़ेगा। पहले तो अपनी मूरत की चैतन्य प्रदर्शनी लगानी पड़ेगी, जिसमें नैन कमल समान दिखाई दे, होठों पर रूहानी मुस्कुराहट दिखाई दे और मस्तक से आत्मा की सूरत दिखाई दे। तो क्या ऐसी अपनी मूरत को सजाया है? यह प्रदर्शनी भी तैयार कर रहे हो या सिर्फ स्टॉल की प्रदर्शनी तैयार कर रहे हो? इसका इनाम भी मिलेगा ना? आप आपस में एक दो को स्टॉल की सजावट का इनाम देंगे और बाप दादा इनाम देंगे। चैतन्य प्रदर्शनी की सजावट का, इसलिए अब डबल इनाम मिलेगा। किस किस ने अपनी चैतन्य प्रदर्शनी व अपने मस्तक के बैनर द्वारा सर्विस की, उसका इनाम देंगे। अब रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट तो आना ही है ना। 3 नंबर्स को इनाम मिलेगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। बाप दादा भी 3 इनाम देंगे। हर एक अभी सोच रहे हैं, हम फर्स्ट इनाम लेंगे और फर्स्ट में भी आ जाएंगे। अगर सब फर्स्ट में आ जावे तो भी सौगात देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। जब इतने विजयी बनेंगे तो विजयी रत्नों के आगे इनाम की क्या बड़ी बात है। सब फर्स्ट नंबर बनो तो इनाम भी सबको मिलेगा, स्थूल में मिलेगा। सूक्ष्म कहेंगे तो बड़ी बात नहीं होगी। साकार सृष्टि निवासी होने के कारण साकार में भी देंगे। क्या देंगे वह अभी नहीं बतावेंगे, वह उस समय प्रसिद्ध होगा। जैसी योग्यता होगी उस योग्यता के अनुसार इनाम होगा। गोल्ड भी क्या बड़ी बात है। थोड़े समय के बाद यह सारा ही सोना आपके चरणों में आना है। विश्व का मालिक बनने वालों के लिए यह सब क्या बड़ी बात है। जो बाप दादा की सौगाते है ना, जितना नंबर उतनी सौगात, जितना बढ़िया सर्विस की सफलता दिखाएंगे उनको ऐसी बढ़िया सौगात मिलेगी। बाकी स्टॉल की सजावट का इनाम यह दीदी दादी देंगी और वह बाप दादा देंगे। अच्छा दिलासा नहीं है, प्रैक्टिकल में देंगे। अच्छा ऐसे सदा विजयी, सदा सफलता मूरत, सदा स्वस्थिति से, सदा हर परिस्थिति का सामना करने वाले, सदा निर्माण बन विश्व नव निर्माण करने वाले और कदम कदम पर एक बाप की याद में एक मत हो, एक का नाम बाला करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा ओम शांति।